ओम ज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्रदान्वितम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकालपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन चैतं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो माताएं कम है, नोटबंदी के लिए तो नहीं, नोट बदलने के लिए। अभी लाइन चालू है, अभी इस समय रात को है, 8 बजे तक है।
कल छुट्टी है, कल बंद नहीं है।
सो आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात हो रही है कि नोट बंद हो गए सारे, है ना। कोई खुल के कह भी नहीं पा रहा। जो कहेगा कि नहीं ठीक नहीं हुआ, उसको बोलते हैं गद्दार है। हाँ परेशान है। सो जब मोदी ने अनाउंस किया था तो काफी लोगों में उत्साह था कि हाँ बहुत अच्छा किया। लेकिन 2 दिन जब लाइन में लगे 4-5 घंटे तो उत्साह कम हो गया थोड़ा सा। सो हाँ 10-10 घंटे लगे। आज सुबह हम लोग गए थे, बड़े मंदिर जा रहे थे हम, तो रस्ते में भी हमने देखा कि सुबह 7 बजे लोग बाहर लाइनों में लगे हुए थे। रात 4-4 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए। सो ये नोटबंदी सही हुआ कि खराब हुआ? सो पूरा देश जो है वो इसी विषय पे बात कर रहा है कि ये नोटबंदी सही हुआ कि खराब हुआ। ये क्या बज रहा है? ये रिजेक्ट कौन है? सो अगर हम इसको तात्विक दृष्टि से देखें तो ये भौतिक जगत की एक और समस्या है, है ना। जैसे हम लोग और 1 करोड़ समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक और समस्या आ गई है। और भागवतम में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब समस्या आती है तो एकदम इतने वेग की तरह आती है, जैसे समुद्र में लहर उठती है ना, एकदम बहुत ऊंची लहर उठती है और 1 सेकंड में ही उसका प्रभाव खत्म होता है। जैसे ही किनारे से टकराती है वो झाग भी एकदम से बैठ जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये एक और प्रॉब्लम आई है खत्म हो जाएगी। हाँ महीने में 15 दिन में सब लोग इसके बारे में भूल जाएंगे, है ना। अभी कल परसों तो नमक भी 400-500 रुपए किलो बिका है। सो जिसका जितना जोर चल रहा है उतना वो मतलब मुनाफा कमा रहा है। सो हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि नोटबंदी से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लोगों को एक झटका तो लगा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मूल प्रॉब्लम है, जो काला धन इकट्ठा करने की जो आदत है, वो आदत थोड़ी ना बदली है ना। अब लोग और अलग अलग तरीके इजाद कर लेंगे, अलग अलग तरीके निकाल लेंगे काला धन इकट्ठा करने के लिए। सो अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या ये अच्छा हुआ कि गलत हुआ, हाँ, तो और हमें क्या करना चाहिए, जो भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए इस टाइम के अंदर। ठीक है, आप समय के अनुसार जैसे भी हैं, जो आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उसको आप जमा करा के चेंज कराओ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी के बारे में चर्चा किए जाओ, है ना। तो ये कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा इसका प्रभाव। लेकिन जो हमारी मूल समस्या है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम, जो हमारी मूल प्रॉब्लम है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे 1922 में जो जब 1922 के समय में हिंदुस्तान गुलाम था, है ना, चारों तरफ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के जोर पकड़ती जा रही थी लोगों की आवाज़, लोग इकट्ठा हो रहे थे और जो अंग्रेज़ हैं वो लोगों को मार भी रहे थे हिंदुस्तानियों को, और बहुत लोग मरे भी उसके अंदर। लेकिन तो पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा था कि हमें आज़ाद होना है गुलामी से। सो ये सोच हमारे जो इस कौम के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद भी इस बात को मानते थे कि आज़ादी चाहिए, है ना। तो जब 1922 में शिल प्रभुपाद मिले अपने गुरु से, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, कलकत्ता में मिले थे, उल्टा डिंगी में, एक जगह है उल्टा डिंगी, सो वहाँ पर मिले, छत पर मिले थे मकान की। सो शिल प्रभुपाद ने अपने जो उनके अभी गुरु बने नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा कि आप सब लोगों को बोल रहे हो भक्ति करो, हरे नाम करो, तो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया जाए, है ना, अभी ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें क्यों नहीं सहयोग कर रहे। आप लोगों को अभी भी इस नाजुक समय में भी आप लोगों को ये क्यों बोल रहे हो कि देश को आज़ाद कर, कि हरि नाम करो, भगवान का नाम लो। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा कि आप भी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, है ना, लेकिन पिछले जन्म में आप कहाँ थे, कहाँ आपका जन्म हुआ था पता नहीं है, अगला जन्म कहाँ होने वाला है वो भी पता नहीं है। तो ये जो गुलामी है ये टेम्पररी है, ये कुछ समय के लिए है ना। सो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, कि हमें इस भौतिक शरीर से आज़ाद होना चाहिए, हमें ऐसे स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको स्वीकार किया, उन्होंने बोला आपकी बात सही है कि ये जो छोटी छोटी नश्वर कुछ दिनों की, कुछ महीनों की प्रॉब्लम्स है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनकी बात को स्वीकार किया, अपने गुरु की बात को, और उन्होंने भी भक्ति जो है प्रस प्रचार आरंभ किया उन्होंने। सो हम लोगों का भी एक कर्तव्य है कि जो भी हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, या अब जो ये नोट बदलने का है, इसमें आप लोगों का कुछ रोल नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ एक ही गलती कह लो कि आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो नोट बदलने के लिए आपको भागना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में पैदा नहीं भी हुए थे, जो आजकल भारत घूमने के लिए आए हुए थे, वो भी फंस गए, तो उनके भाग्य में लिखा हुआ था प्रॉब्लम फेस करना, नहीं तो बिना आपके मेरे कुछ किए हम लोग इस समस्या में आके फंस गए। तो हम क्यों फंसे इस समस्या में, दूसरे क्यों नहीं फंसे? हम लोग इसलिए फंसे क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा हुआ था ये, है ना, हमें ये तकलीफ ये दुख हमें सहना ही था, है ना। सो ये कारण नहीं होता, कुछ और कारण बन जाता, लेकिन दुख हमें सहना ही पड़ता, है ना। तो ये भगवान की, भगवान इतने व्यवस्थित ढंग से पूरी व्यवस्था चलाते हैं कि करोड़ों 120 करोड़ लोगों को उन्होंने एक साथ एक प्रॉब्लम में डाल दिया, है ना, अपने किसी कष्ट को भोगने के लिए। कोई और व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य इतनी क्षमता नहीं है कि वो ऐसे कर दे। सो चाहे हम कुछ गलती करें चाहे नहीं करें, हमारे पर कई बार समस्याएं आकर लद जाती हैं, हमें हम समस्याओं से घिर जाते हैं, उसके पीछे उसको सॉल्व करने के लिए दौड़ने लगते हैं। अब भागवतम में कहा भी क्या है, हाँ, पदम पदम यद्विक्ता, कदम कदम का खतरा है यहाँ पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक कदम आगे रखा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी, है ना। आप टीवी न्यूज चैनल कभी अगर आप देखो तो इंटरनेट देखो तो वहाँ पर सारी खराब न्यूज ज्यादा है, अच्छी न्यूज कम है, है ना। अब पीछे मुझे कोई बता रहा था कि एक चैनल ने शुरू किया है, सिर्फ अच्छी न्यूज ही दिखाएगा, वो खराब न्यूज दिखाएगा ही नहीं। वो कहता है कि सब लोग परेशान है कि सब जगह से खराब न्यूज ही आ रही है, अच्छी खबर ही नहीं आ रही कहीं से। तो उन्होंने आधे घंटे का ऐसा समय रखा है जिसमें वो सिर्फ अच्छी खबरें सुनाएंगे ताकि लोगों को लगे कि यार कुछ अच्छा भी है यहाँ पर, नहीं तो सारा खराब ही दिखाई दे रहा है ना। इसने उसको मार दिया, वो चोरी हो गई, डाका पड़ गया। हाँ, आजकल तो सीसीटीवी कैमरे में भी कई बार फोटो आ जाती है चोरी करते हुए की। हाँ, लेकिन हमारे बामन रूप प्रभु की फोटो नहीं आई तो मोबाइल चोरी हो गया था तो चोरी होना था, किस्मत में ऐसा था कि नुकसान हो तो हो गया। सो अगर हम कुछ भी, अगर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे ऊपर ये कष्ट आया है तो इस कष्ट के पीछे ये कारण रहा, कई बार वो कारण दिखता है लेकिन ज्यादातर कारण नहीं दिखाई देता, है ना। हम सिर्फ, हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, हमारे पास क्या विकल्प है कि हम उस समस्याओं का सामना करें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये जो मानव शरीर है ये समस्याओं का सामना करने के लिए नहीं मिला, है ना। मानव शरीर हमें मिला है कि ये समस्याओं का सामना भी करें, और लेकिन जो मुख्य जो ऊर्जा है मानव जीवन की वो हम लगाएं कि चलो इस बार तो हम फंसे हुए हैं, अभी तो झेलना पड़ेगा, क्या करें, नहीं जा सकते छोड़ के। लेकिन ऐसा कुछ कार्य करें कि ये शरीर छूटे तो दोबारा से ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो ये जो भी समस्याएं हमें आ रही हैं आती रहेंगी, और अगर हम जैसे जीवन चला रहे हैं, अगर हम ऐसे जीवन को चलाते रहेंगे तो हमें बार बार ये प्रॉब्लम्स फिर से आती रहेंगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाए, है ना, कभी तो इस प्रॉब्लम के ऊपर फुल स्टॉप लग जाए, है ना। तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि हम कितने भी और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे कर्मों की वजह से है ना। हम दो ही तो कर्म करते हैं, है ना, एक अच्छा और एक। जैसे अगर किसी ड्राइवर से पूछा जाए तूने अपनी जिंदगी में कितने मोड़ काटे, तो कोई बोलेगा इसका आंसर कैसे हो सकता है, हमने करोड़ों मोड़ काटे हैं। लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति होगा बोलेगा मैंने दो ही मोड़ काटे हैं, दायां और बायां। नहीं, दो ही मोड़ तो काटे हैं आपने, वो दायां बायां मोड़ आपने एक करोड़ बार काट लिए, लेकिन मोड़ तो दो ही काटे थे। उसी प्रकार से हम करोड़ों कर्म कर रहे हैं लेकिन दो ही है कर्म, अच्छा और बुरा, है ना। तो अच्छा कर्म करेंगे तो हमें सुख भोगने को मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो दुख भोगने को मिलेगा। तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाए, अच्छे कर्म करने से क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कल को अंबानी के बेटे के घर में पैदा हो जाए, नहीं, जब अंबानी के बेटे की शादी होगी बच्चा हो, हो सकता है हम ही हो अगले जन्म में। तो लेकिन क्या अंबानी को प्रॉब्लम्स नहीं है, अंबानी को भी प्रॉब्लम्स है। और यमराज जी भागवतम के छठे स्कंद में कह रहे हैं कि देखो, जब यमदूत को यमदूत लेने गए थे अजामिल को, और वहां पे विष्णु दूत आ गए तो यमदूतों को वहां से भागना पड़ा। तो वो भाग के गए तो यमराज जी के पास गए, उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी जीव को लेने गए हो और हमें खाली हाथ लौटना पड़ा हो, है ना। लेकिन आज ऐसा हो गया कि वो चतुर्भुज रूप में कई चार लोग आए और उन्होंने हमें भगा दिया, तो आप हमें बताओ। और उन्होंने, हमने उनसे पूछा कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, तो उन्होंने बोला जाके अपने स्वामी से पूछना। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताओ कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। तो यमराज जी ने कहा देखो, जो बुरा कर्म है वो तो बुरा कर्म है ही, लेकिन जो अच्छा कर्म है वो भी बुरा कर्म है। तो यमदूतों ने कहा ये क्या बात है, अच्छा कर्म बुरा कर्म कैसे हो सकता है। तो यमराज जी ने उनसे पूछा, अच्छा कोई तुम्हारे पैर में लोहे की जंजीर बांध दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा, हमारी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। अच्छा अगर कोई तुम्हारे पैर में सोने की जंजीर बांध दे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। अगर आपके पैर में सोने की जंजीर बांध दी, हाँ, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अभी सोने का रेट भी महंगा हो गया है, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। पैर में जंजीर बांधी है, गले में लटकाने के लिए नहीं दी। So, जंजीर अगर सोने की भी है तो दुखदाई है, है ना। अगर हमारे पैर में सोने की जंजीर भी बंधी हुई है, वो हमारी आजादी को छीन रही है। और जो चीज हमारी आजादी को छीन रही है वो अच्छी कैसे हो सकती है, है ना। तो यमराज जी ने कहा देखो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम करने का फल भोगने के लिए भी तो उसको इस धरती पे आना पड़ेगा। तो वापस भौतिक शरीर ले लिया, और जब भौतिक शरीर लेगा तो फिर अच्छा काम करेगा बुरा काम करेगा, तो इसी चक्कर में लगा रहेगा। तो फिर अच्छा काम, अच्छा कर्म कहां रहा, अच्छा कर्म भी बुरा बन गया। क्योंकि जो आत्मा है वो सत चित और आनंद है, और शरीर असत अचित और निरानंद है, कोई आनंद नहीं है शरीर के अंदर, है ना। कभी किसी एक घुटने में दर्द है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सो एक सत चित और आनंद वस्तु को अगर हम असत मतलब नश्वर, अचित मतलब नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, और निरानंद चीज के अंदर डब्बे में बंद कर देंगे, तो वो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है उसको, नहीं। सो उसी तरह से अगर हम अच्छे काम भी करेंगे तो भी हमें एक और भौतिक शरीर में घुसना पड़ेगा, वो चाहे कितना ही अच्छा भौतिक शरीर हो, लेकिन भौतिक शरीर होता है। और भौतिक शरीर की खासियत क्या है? भौतिक शरीर की खासियत है कि उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसको बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन है, कितना उसने पैसा कमाया और सब जगह उसकी जय जयकार हो रही है, लेकिन बूढ़ा तो हो गया वो, बुढ़ापे का कष्ट तो सही रहा है वो। ऐसा थोड़े ना कि अमिताभ बच्चन है तो बुढ़ापे का कष्ट नहीं सह रहा है ना, सह रहा है ना वो बुढ़ापे का कष्ट। और कभी ना कभी मृत्यु भी हो जाएगी, लोग कितनी दुआएं मांग लें कि अमिताभ बच्चन कभी ना मरे, लेकिन कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो कितने भी अच्छे कर्म कर लें, कितना भी अच्छा शरीर मिल जाए, ये चार जो प्रॉब्लम्स है इसका सामना करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो यमराज जी ने कहा जब आपने अच्छे कर्म किए तो उसके फलस्वरूप तुम्हें सोने की जंजीर से, सोने की बेड़ी से बांध दिया, तो वो अच्छा कर्म कहाँ रहा, वो भी खराब कर्म ही है ना। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चार जो अगर आप मोक्ष पाना चाहते हो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो, तो चार बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं होती हैं। अगर वो चार चीजें आपके पास में है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो चार चीजें क्या है? अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, वो बोलेगा यार अपने घर में बैठ दो, है ना, मेरे पास पैसा है, मुझे सब पता है ना, जो होगा मैं पैसे के बल पे देख लूंगा उसको, नहीं। और कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो तो उसको सब लोग बोलेंगे उसको आप तो बहुत सुंदर हो, तो उसको घमंड हो जाएगा, नहीं। कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा हो गया तो वो यही सोचेगा कि मैं तो टीपू सुल्तान के खानदान से हूँ, तो उसी घमंड में रहेगा, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो उसके, नहीं। और चौथा जो बाधा है, जो चौथी वस्तु जो बाधा है वो क्या है? अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, जैसे ये डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, आप उनको बोलो भगवान का भजन करो, वो कहेंगे पागल हो गए हो तुम, ये टाइम कमाने गए भगवान का भजन करने गए, देखेंगे कभी, और किसने देखा भगवान को, है ना। वो आपसे ऐसा तर्क करेंगे, बोलेंगे प्रूव करो भगवान है, आप साबित करो। तो एक बहुत कोई महान व्यक्ति थे, तो उनको किसी ने बोला कि देखो भगवान है तो दिखाओ, तो उन्होंने बोला आपके पास, आपने कभी दिमाग को देखा है? तो उसने बोला मैंने दिमाग को तो नहीं देखा कभी। तो कह रहे इसका मतलब आपके पास दिमाग नहीं है क्या, दिख नहीं रहा ना। तो ऐसा नहीं है कि दिखेगी वस्तु तो ही उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है, नहीं दिख रही तो भी उसका अस्तित्व हो सकता है, इतनी सूक्ष्म है कि नहीं दिख रही, है ना। अब जो हवा है इसके अंदर बहुत बारीक कण इसमें मिले हुए हैं, है? तो जैसे आप इसको कमरे को बंद रखो तो कोई हवा ना आए ना जाए, तो एक दिन के बाद खोलो तो एक धूल की परत दिखाई देगी, सारी धूल बैठ जाएगी, है ना। इसका मतलब हवा के अंदर धूल है, अभी हमें दिख नहीं रही है वो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु है तो दिखेगी जरूर, कोई जरूरी नहीं है, है ना। ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि दिखेगी तो मानेंगे, तो उनको कन्फ्यूजन है ना। ऐसे कोई बोले कि कोई एक व्यक्ति ने दूसरे एक गाँव के आदमी से पूछा कि अच्छा ये बताओ अमेरिका दूर है कि सूरज दूर है, अमेरिका दूर है कि सूरज दूर है, तो उसने बोला अमेरिका दूर है। उसने कहा यार बेवकूफ है, तो सूरज दूर है, करोड़ों मील दूर है यहाँ से। उसने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है, अमेरिका दूर है। उन लोग कैसे कह रहे थे कि यहाँ से सूरज दिख रहा है ना, अमेरिका दिख रहा है, अमेरिका तो नहीं दिख रहा, तो और दूर होगा इसलिए तो नहीं दिख रहा हो, है ना। अगर कोई बोले कि जो दिखेगा वही समझ में आएगी बात, ऐसा नहीं। लेकिन अगर वो कोई उस व्यक्ति को किताब पढ़ाओ, उसको बोलो देखो अमेरिका तो यहाँ से 10-15 हज़ार किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज लाखों किलोमीटर दूर है, ये देखो यहाँ पे किताब में लिखा है। अगर वो किताब को विश्वास कर ले अगर वो व्यक्ति, है ना, तो वो मान लेगा कि हाँ यार वाकई में दूर ही होगा, ठीक है। नाप तो सकता नहीं है वो इंची टेप लेके, वो किताब पे विश्वास कर लिया तो मान लेगा, नहीं। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको शुरू से अगर किताब में बताएंगे कि सूरज ज़्यादा दूर है अमेरिका कम दूर है, तो बच्चे मान लेंगे, है ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे उसको। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2 जमा 2 4 है, लेकिन क्यों 4 है, 2 जमा 2 5 क्यों नहीं है, है ना। हम कभी ये इसको प्रश्न नहीं करते, हम 2 जमा 2 5 भी हो सकते हैं, किसी ने बोला होगा 4 है, हम उसकी बात क्यों माने। लेकिन एक व्यवस्था चल रही है, उसके अनुसार जो है, अगर हम 2 और 2 5 बोलेंगे तो हम उसको व्यवहारिक जीवन में चल नहीं पाएंगे, नहीं। एक कुछ प्रमाणिक किताबें हैं उसमें जो लिखा है हम उसको मान लेते हैं। तो जो ये वैज्ञानिक किताबें हैं, जो हिसाब और ये सब किताबें हैं, ये जड़ विद्या है। अगर हम जड़ विद्या को उसमें से पढ़ के मान लेते हैं, तो जो आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या भगवद गीता भागवतम इत्यादि ग्रंथों में दे रखी है। तो जो भगवान की वाणी है, भगवद गीता तो खुद भगवान ने बोली है। अगर कोई बोले कि भागवतम भगवान ने थोड़े ना बोली है, तो चलो भगवद गीता तो बोली है भगवान ने, भगवद गीता को मान लो, नहीं। वो तो सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवद गीता बोली है। और भागवतम की अगर हम बात करते हैं, भागवतम में भी बहुत सारे अध्याय ऐसे हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने अलग अलग भक्तों से वार्तालाप किया, बातचीत किया, तो वो भी भगवान की वाणी है, तो उसको भी हमें मानना चाहिए। तो बाकी सबको छोड़ दें क्या? तो जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होता है, एनसीईआरटी की किताब लिखती, हम मान लेते हैं उसको। इसी तरह से भगवान ने कुछ भक्तों को बोला है कि ये भक्त बहुत अच्छे हैं, जैसे उद्धव जी हैं, व्यास देव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने बोला कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये जो बोल रहे हैं इनकी बात मान लो। तो जो व्यास देव जी ने भागवतम में बोला, सुखदेव गोस्वामी ने बोला भागवतम में और दूसरे पुराणों में बोला, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, है ना। नहीं तो हम जड़ विद्या भी पूरी नहीं ले पा रहे, आध्यात्मिक विद्या जो कि कुछ दिख नहीं रहा, सब श्रद्धा के ऊपर ही आधारित है, है ना। वो श्रद्धा के ऊपर आधारित वस्तु को कैसे समझ पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे अगर हम ये मान लें कि भगवान जो है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते और भगवान के भक्त भी कभी गलत बात नहीं बोलते, है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जब तक इस भौतिक संसार में रहोगे ये प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेंगी, अगर आपने बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि आप भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। हाँ, कलो दोष निथे राजन, कि नारद जी जो है वो कह रहे हैं कि देखो हे राजा, जो कलयुग में दोष ही दोष है, कभी 500 का नोट बंद हो रहा है, कभी 1000 का बंद हो रहा है, अभी आप सब लोग 100 का नोट इकट्ठा कर रहे हो, ये मोदी 100 का नोट भी बंद कर देगा, है ना। आप सबको आ रहे होंगे समाचार, 100 का नोट भी बंद होने वाला है, नेट पे आ गया। कलो दोष निधे राजन, एक कलयुग में दोष ही दोष है, आप एक समस्या का समाधान ढूंढोगे एक और समस्या सामने आके खड़ी हो जाएगी, है ना। अस्ति ही एको महान गुना, लेकिन एक महान गुण है इसके अंदर, सारे दोष ही दोष है, एक महान गुण है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, अगर हम भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
अगर हम भगवान के दिव्य नामों का जप और कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, मुक्त संगा, हम इस भौतिक शरीर और इस भौतिक शरीर की असुविधाओं से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो मुक्त होकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ परम ब्रजेत, हाँ हम भगवान के धाम चले जाएंगे। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत, भगवान के धाम चले जाएंगे। परम ब्रजेत मतलब, ब्रजेत मतलब जाना, और परम मतलब भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, हम भगवान धाम चले जाएंगे। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो जीवन की समस्याएं हैं उससे संघर्ष मत करो, आप संघर्ष करो, जीवन की समस्याओं का सामना करो, लेकिन ये भी समझ लो कि आप जीवन की समस्याओं से कभी भी पार नहीं पा सकते, है ना। आपको कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जिसका फल अक्षय है, अक्षुण है, जिसका फल, है ना, जिसका फल ना तो घटता है और ना ही खत्म होता है, और वो क्या है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, धर्म का पालन करो, और धर्म क्या है, भगवान की वाणी, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की वाणी भगवान ने स्वयं बोली है और अपने भक्तों के माध्यम से बोली है, अगर हम उसको स्वीकार करेंगे, उसका पालन करेंगे, अगर हम नेहा भीक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, तो जो हम भगवान की और भगवान के भक्तों की वाणी के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो नेहा भीक्रम नाशोस्ति, तो उस फल का कभी नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते मतलब कमी भी नहीं होगी, है ना। आप जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हो, वो जप का जो फल है वो ना तो कभी घटेगा और ना ही कभी उसका नाश होगा। जिस तरह से भगवान शाश्वत नित्य है, उसी तरह से भगवान का नाम भी शाश्वत और नित्य है। कैसे हमें पता चलता है, हमें शास्त्रों से इसकी जानकारी मिलती है, जहां पर बताया गया नाम चिंतामणि कृष्णश चैतन्य रस विग्रह, जो भगवान का नाम है वो चिंतामणि पत्थर के समान है, हाँ चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य चेतन है, कुछ जड़ नहीं है भगवान का नाम, चैतन्य रस विग्रह, हाँ और रस से भरा हुआ है, जैसे गन्ना रस से भरा होता है ना, ऐसे ही भगवान का नाम रस से भरा हुआ है, हाँ नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्वान नाम नामिनो, और पूरी तरह से मुक्त है, नित्य मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है, कुछ भी दोष नहीं है इसके अंदर, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, और ये सब गुण इसके अंदर क्यों है, अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, ये सारे गुण हरि नाम में इसलिए है, भगवान के नाम में इसलिए है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी भेद नहीं है, अभिन्न है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम भेद है, अभिन्न है, इसीलिए भगवान के नाम में जो गुण है वो भगवान से मिलते जुलते हैं, और क्योंकि हम हरि नाम के द्वारा भगवान का संग कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी कहते हैं कि जब हम हरि नाम लेते हैं तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण हमारी जीवा पर आकर नृत्य करते हैं, है ना। सो जब भगवान कृष्ण हमारी जीवा पर आकर नृत्य करेंगे तो क्या हमारा पूरा शरीर पवित्र नहीं हो जाएगा, हमारा पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, है ना। सो भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, और क्योंकि भगवान और भगवान का नाम नित्य है, चैतन्य है, रस विग्रह है, और क्योंकि भगवान का नाम पूरी तरह से मुक्त है, इसीलिए भगवान के नाम को जपने का जो फल है वो भी शाश्वत है, नित्य है, वो भी कभी घटेगा नहीं और ना ही उसका कभी नाश होगा, है ना। सो हम भौतिक धन संपत्ति कमाने का प्रयास तो करते हैं, वो आप करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी जाके सब छोड़ दीजिए, हाँ अभी आप छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसके साथ साथ आप प्रयास कीजिए कि आप जो आध्यात्मिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति को भी आप कमाएं। ऐसा मत सोचें पूरा अपनी ऊर्जा पूरी शक्ति धन भौतिक धन कमाने में मत लगा दीजिए, अपनी पूरी ऊर्जा अपने घर की देखभाल करने में मत लगा दीजिए, अपने कुछ ऊर्जा जो है वो ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति कमाने में भी लगाओ जो ये शरीर छोड़ने के बाद में आपके साथ आगे जाए, आपको आगे फायदा पहुंचाए, है ना। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब कितनी भी समस्याएं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नोट नए बंद हो पुराने चालू हो, नए चालू हो पुराने बंद हो, आप सब इससे ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सब आराम से बैठकर भगवान के नामों का जप कीजिए, है ना। हमारे सारी समस्याएं इसीलिए क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हमारी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमें इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?